नाम संकीर्तन का अवसर ही प्राप्त हो जाए। इसमें ऐसी ये समझने की है या इसे दूर से कि नवदीप में तो ये मनुष्य साधारण न लीला के समान ली जाएंगे और संधीरा में भी प्रगम्भ भाव से राजकाजी के भाव का साधन किया संधीरे में रहेगा। गोपीनाथ तत्व तो क्या है, कृष्ण की कैसे अद्भुत लीलाएं हुई और कृष्ण मथुरा में जब चले गए, मथुरा से द्वारका चले गए तो विरह में राधा जी की क्या स्थिति हुई, कैसे मुक्ति हो करके पड़ी जाती, इन सब चीजों का अर्पण किया भाव अवसर पर क्या गए वो गोदावरी तट पर और फिर वहां से लौट। अब हम साधारण दृष्टि से देखते हैं कि महाप्रभु की जो लीलाएं नौ दृष्टि हुई वो इतनी गंभीर हुई है, बार ज्यादा कर सकता है क्या थी? और गंभीरा में सिर्फ भागवत का था, श्रीमती राधिका जी का भाव था, बल्कि उचित हो जाते राधा जी जैसे जैसे करते करते कभी समुद्र में टूट जाते, कभी कहते कहते सात गहरों को पार करके चले जाते इस दर्द का, कभी खुद जैसा बन जाते, कभी हाथ पैर दर्दा समझते हो जाते, ये सब संस्कृत बढ़ जाते। इसमें महाप्रभु जी की कौन सी लीला है, इस पर हम विचार करें, नहीं तो महाप्रभु जी की लीला किसी विचार समझ में नहीं आएगी। जैसे कृष्ण है वृंदावन परिचर्य पागल एकम नगर छवि, वृंदावन को छोड़कर के कृष्ण कहीं नहीं जाते, नंदनंदन कृष्ण कभी नहीं जाते, कभी नहीं, समग्र में पहुंच गया है, अपने द्वारा में पहुंच गया है, उस क्षेत्र में पहुंच गया है, मथुरा में जो गए वो बात से पुत्र नंदन वो कृष्ण के कुछ अलग हैं, सत्ता का एक होने पर भी रंग विचार से ब्रजेंद्र नंदन वृंदावन छोड़ करके कभी नहीं जाए। वो गए कौन, जब उन्होंने बात से वो गए मथुरा और द्वारका, मथुरा में भी तीन चार रहते हैं बात देव के लिए, द्वारका में भी कृष्ण उसी रूप में नित रहते हैं, तो फिर वहां पर कौन गया किस क्षेत्र में, तो कितने क्षेत्र में कृष्ण ही गए कि तो वो द्वारका मथुरा वाले वृंदावन वाले कृष्ण गए, वो उनका वैभव तो नहीं गया। कृष्ण ध्यान से उधर नहीं जाते, किंतु ऐसा मालूम कृष्ण ही जा रहे हैं कुछ क्षेत्र और वहीं पर गोपी हम उसे मिली, उसी प्रकार से समझो एक विशेष और चीज, राधिका जो है वृंदावन को छोड़ करके कभी नहीं जाती, ब्रज छोड़कर कभी नहीं जाती, वो जैसे कृष्ण वृंदावन में रहते हैं राधा जी उनका कृष्ण से कभी विरह नहीं होता, राधा कृष्ण सब में विरह रहते कभी नहीं विरह होता, किंतु नंदगांव में देखा जाता है और पूर्व कृष्ण को बलदेव को लेकर के मथुरा में चले आए तो उनको विरह हुआ और तड़प रही है मर रही है उनके विरह में, उधर भी गए उनकी दशा देखा, कृष्ण से आकर के बोले आपको जल्दी से चलना पड़ेगा नहीं तो ब्रज विलुप्त तो हो जाएगा, सभी लोग मर जाएंगे। इसलिए वहां पर जो राधा को जो देखा जाता है वो वृषभान नंदिनी नहीं है, स्वयं रूप राधा नहीं है, वो कौन है, वो है योगिनी राधा, ऐसा देखा जाता है। वियोग कर रहे हैं जिससे वियोग कैसे हो गया, तो जिनको हो रहा है वो वृषभान नंदिनी जो सत्र में कृष्ण के साथ में रहते हैं गोपीनाथ रहते हैं वो नहीं, उनका कुछ प्रकाश है ये वियोगी है, तो पता एक होने पर ही रक्त की दृष्टि से दोनों में बहु उनको वियोग होता है, राधा कृष्ण के वियोग कभी संभव नहीं, किंतु यहाँ पर वियोग से कहा जाता है इसलिए ये वियोग ही ज्यादा है। और अपने क्षेत्र में जिसको देखा जाता है कृष्ण से मिल रही है वो कौन है, ये संजोगी ज्यादा है, संजोगी मैंने योगी उसके विनय है और फिर वहां के राजा जी गोपियों के साथ अपने मनोरथ पर रखकर और वहां से वृंदावन में सुना जाते हैं। ये रथ यात्रा का प्रसंग है। रथ यात्रा जो होती है जगन्नाथ जी में, वो जगन्नाथ जी का मंदिर ये द्वारा है या कुरुक्षेत्र है और गोपियां वहां से जो लाती हैं कहाँ लाती हैं ब्रज में जाती हैं, ये उनका भाव है। तो ये संयोगी वियोगी और स्वयं रूपा जो राधा जी है ठीक उसी तरह से ही यहाँ पर राधा कृष्ण की नित्य संयोग मिलनमयी न क्रिया है अनुभव ये नौ दिन क्रिया है सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि न क्रिया और वहां पर पूरी जगन्नाथ पुरी गंभीर में गंभीरा में जो उनकी बड़ी रहस्य क्रियाएं होती हैं वो बिरहनी राधा जैसा ये बिरहनी कृष्ण का ये स्थान है ये बिरह का और जब मिलते हैं रामानंद देवी से ये संजोगी राधा जैसा वहां पर रामानंद को अपना स्वरूप देख लाते हैं अगर तो राज महाभाव जिसको देख करके रामानंद देवी उत्सित होकर के उत्सित हो जाते हैं जो ललिता सती है वो भी मोहित हो जाए। इसलिए महाप्रभु की लीलाएं बहुत गंभीर है बहुत गंभीर किसी भाव को देने के लिए अनर्पित चरण करुण करो समय संबंधों तक जल रखा यही भाव लेने के लिए जहां पर भगवान का नर लीला जैसा स्वरूप नहीं है लीलाएं नहीं है उसे प्रेम नहीं हो सकता। यशोदा मैया को उन्होंने अपने मुख में विष स्वरूप कर खिलाया उन्होंने सोचा इसको सोना लग गया किसी की नजर लग गई ये नहीं देखा कि ये स्वयं भगवान है अर्जुन को दिखलाया जब विष स्वरूप दिखलाया उसकी प्रकृति के लिए हमारा आज्ञा का पालन करो शुद्ध करो मैंने सबको दांतों में तले नरक किया सबको मैंने मार रखा तो निमित्त भाव उत्पन्न और प्रकृति के लिए उन्होंने विश्व रूप दिखाया कि मैं स्वयं ब्रह्म हूं भगवान हूं। जब देखा असंख्य सेनाएं विषम पितामह इत्यादि जितने सेनापति हो कौ और पांडव सब उनके दांतों के तले मरे हुए पड़े हैं देखकर के आश्चर्यचकित हो गए और हाथ जोड़ करके प्रभु अपना ही अवरुद्ध संवरण कर दीजिए दूर कर दीजिए मैं सह नहीं सकता इसको आज से मैं आपको सखा नहीं कहूंगा आपके घोड़ों हमारे घोड़ों को धोने के लिए आपको नियुक्त नहीं करूंगा अपनी सेवा नहीं कराऊंगा और कभी भी सखा नहीं कहूंगा हाथ जोड़ करके खड़े हो किंतु जसोदा मैया को दो दो बार निकलाया हूं उनको कोई अंदर नहीं आया मेरा ये भेजा किया उन्होंने ब्राह्मण को बुलवाए काली बात गाय मंगाई और उसके काले पुत्र से गोबर और गोमूत्र को मिला करके कृष्ण को स्नान कराया गया और मंत्र बोला गया ब्राह्मण को हजारों लाखों गाय दान की जब हमारे बेटे थे के ऊपर में जो विपत्ति थी ये चली गई भला किसी पर कोई विपत्ति आ सकती है कोई नहीं आ किंतु जसोदा माँ ऐसा समझती है इसलिए जहाँ पर कृष्ण का ऐश्वर्य भाव रहेगा ये कृष्ण भगवान है तब तो प्रेम नहीं हो सकता है। यदि कोई सखा ये जाने जैसे हनुमान है खूब सेवा करते हैं बड़ी सेवा करते हैं कैसी सेवा करते हैं एक उदाहरण दे एक दिन मैया जो पिताजी सीता मैया स्नान कर रहे हैं स्नानागार में और स्नान करने के बाद में श्रृंगार कर रहे थी सिंधु दे रही थी सुहागर के हनुमान नगर कहाँ से कैसे पहुंच जाया मैया को खोज रहे और स्नानागार में पहुंच गया देखा कि मैया से दूर लगा रही बोला कि मैया ये आप क्या लगा रही हैं बेटा ये सुहाग है सुहाग माने क्या ये पति अजर अमर रहेगा उनको कोई कष्ट नहीं रहेगा और वो उसका जो पति प्रत्यय ये सुहाग अजर है। जब मैया से इसके बाद वो लौट गया मैया को प्रणाम करता जब भैया नाना कार से निकल करके जब चली गई तो वो नाना कार में गया और जितना चिंतू था सबको खोल करके लपेट लिया और अपने चारों अंगों में सब जगह तेंदु से पूरा भर गया और रामचंद्र जी और सीता जी यहाँ की वहां पर पहुंच गए। राजकुमार ने सब लोग देख करके हंसने लगे कि ये क्या कर दिया हनुमान। तो लोगों ने पूछा आज ये क्या तुमने लीला रखी, ये सिंधु सब जगह लगा दिया किस लिए। आगे से मैया चली जो सिर में यदि मन में जो सिंदूर लगाती है तो रामचंद्र जी सब समय अजर कम रहेंगे, कोई दुख नहीं होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने सारे अंगों में से इससे तुम उनके त्योहार के मिलने लगा। ऐसी सेवा करने वाले हनुमान हैं, इसलिए हनुमान जी को सिंदूर लगाते हैं उस लीला की स्मृति के लिए। किंतु क्या कभी रामचंद्र जी के कोई झूठा आ सके हैं? क्या रामचंद्र जी के कंधे पर बैठ सकते हैं? क्या उनको आलिंगन करके उनके पलंग पर बैठ सकते हैं? कभी नहीं। क्यों? वो जानते हैं कि हमारे इष्ट देव ये भगवान है। इससे श्रेष्ठ पांडव लोगों से भी श्रेष्ठ है पांडव लोग द्रौपदी क्या है, इसलिए श्रेष्ठ एक साथ एक पलंग पर सो सकते हैं। कैसे पलंग पर सो सकते हैं? एक ही पलंग पर सोए हुए हैं, एक ही पलंग पर अर्जुन और दोनों का स्त्री एक इधर है कोई इधर है। और उसी समय में नारद जी भगवान का कोई प्रिय व्यक्ति प्रिय भक्त दर्शन करने की लालसा से वहां पर पहुंचे। देखा क्या अर्जुन का पैर कृष्ण की छाती से होकर के दूसरी ओर गया और कृष्ण का पैर अर्जुन की छाती से होकर इधर जा। उधर रुक्मिणी सत्यभामा उनको चमक बुला रही थी और एक तरफ में कृष्ण के पैर को द्रौपदी इत्यादि और कृष्ण की बहन सुमद्रा चमक बुला रही। अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण में कृष्ण आ रहा है, न तो हो रहा है किंतु इनको भी कभी कभी तो दिखला दिया तो इनको डर हो जाता है। फिर कृष्ण के साथ में बैठ नहीं सकते और गोपियों का देखो जैसे सूचना हो जाए। क्यों? अपने प्रियतम से अतिरिक्त तो उनको भगवान कभी नहीं जानती। कृष्ण जब भी कहने के मैं भगवान हूं तो सिंह भी उड़ाती है। कभी कृष्ण को कभी भी भगवान नहीं माना। इसको कहते हैं ये माधुर्य के भाव, चेतन महापुरुषी माधुर्य के भाव को देने के लिए एक कल के बाद ये जगत में आते हैं। इसलिए कहते हैं अनाचरी चिरा करुणया होते हैं, करुणा मतलब वो आते हैं और कहते हैं नाम संकीर्तन के माध्यम से सारे विश्व में कृष्ण के प्रेम से दक्षिण भारत से जबकि पुरी से जब जा रहे हैं वृंदावन में कृष्ण कृष्ण करते हुए पागल हो रहे हैं, बाहर उनके पैरों में छूट जाते हैं जो रास्ते में छुए हैं और उस करके खड़े होकर के अपने दोनों पैरों पर बैठ करके और उनसे कृष्ण और कृष्ण कृष्ण करने लगा। भाग बकरी और सिंह एक महापुरुष के साथ से चलने लग गए। ऐसा कभी किसी नहीं है, सबको भी जो कोई सामने आ गया उसी को प्रेम से रखा। कौन सा प्रेम? प्रेम का प्रेम, वाचा का प्रेम और वह दूसरा नहीं, प्रेम का प्रेम सब हो गया। पात्र बना करके दिया, यदि पात्र नहीं है तो कुपात्र से सुपात्र बना करके उसको प्रेम को दे दिया। जगारे मधारी जैसे लोगों को प्रियकर थे, दुराचारी थे, सबको धर्म करते थे, उस घाट पर जहां रहते थे वहां पर कोई महिलाएं या साधारण आदमी नहीं जा सकता था। किंतु महाप्रभु जी की ऐसी दृष्टि थी कि ये दोनों परम भक्त हो गए। इस जन्म में किसी को मारा नहीं, क्या किया केवल उनके प्रेम से उनके हृदय को द्रवित करके तो उनको परम भक्त बना दिया। ऐसे चैतन्य महाप्रभु आए, वे सब लोगों पर दया करें। आज इन का करके अपनी कथा को मैं
कृष्ण ने नहीं हुए कई में आए क्यों, उसका बहुत सारे कारण है। उसमें एक कारण है साधु बाबा बड़ा भक्त जानिया साधु गुरु रूपे कृष्ण आयना है दिया। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जब देखा ये घोर कलयुग आ रहे हैं, साधु नाम में जितने लोग हैं सब असाधु है, साधु नाम का जगत में उस समय कोई था ही नहीं, काली दुर्गा चंडी करना देवा देवी को अपना कर सके और मदिरा मांस खाते थे, उल्टे से गंदी काम करते थे, लेकिन जो कपड़ा पहनते थे साधु का कपड़ा ड्रेस पहन किया करते थे और माला मोटी मोटी माला और मोटे मोटे तिलक करते थे, लोग उन्हीं को ही साधु मानते थे। इसलिए श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने देखा कलियुग का बड़ा बुरा वक्त है, इनका कल्याण कैसे हो। इसलिए श्रीमद चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होते हुए भी वो स्वयं एक आचार्य और एक गुरु रूप में कलियुग में से नवद्वीप में आए, स्वयं एक साधु का आदर्श स्वरूप रख करके भगवान होते हुए भी साधु का रूप और एक आचार्य का रूप बना करके जीवन में स्वयं भगवत भक्ति को आचरण करते हुए जगत में उन्होंने साधन भजन की शिक्षा दी। श्रीमद महाप्रभु आए थे जीव को कल्याण करने के लिए, उनका अंदर में क्या भाव है, श्रीमती राधा रानी का प्रेम का महिमा, कृष्ण में क्या सौंदर्य है। कृष्ण जब अपना रूप को कभी दिशा में कभी मन स्तंभों में प्रतिबिंब को दर्शन करते हैं, कृष्ण भी स्वयं पागल बन जाते हैं। फिर अयम कम अपर कलित पूर्वम तस्य मत कारागारी, क्योंकि सुंदर रूप है तो अपना रूप को देख करके महा कृष्ण स्वयं राधा रानी जैसे कृष्ण रूप को देख करके दीवार बन जाती थी और कृष्ण को आलिंगन करने के लिए दौड़ती थी। महाप्रभु कृष्ण का मन में एक इच्छा हुआ करती थी अपना रूप को देख रहे कब यह रूप को मैं आलिंगन करूं। इसलिए और श्रीमती राधा रानी कैसे कृष्ण प्रेम को माधुर्य को आस्वादन करती है, ये भाव को लेकर के श्रीमद महाप्रभु आए, लेकिन उसको भाव को आस्वादन करे कैसे। महाप्रभु ऊपर में एक गुरु कर्म की उन्होंने शिक्षा दिया है, श्रीमद महाप्रभु गया में गए और ईश्वरपुरी को साथ में उनको भेज दिए। जब ईश्वरपुरी को साथ में भेज दो नहीं महाप्रभु बोलते ही प्रभु बोले गया यात्रा कहूंगा मार जब तक मैं देख लाऊ चरण को मार। आज रात गया आना सार्थक हो गया, कहते क्यों, कहते ईश्वरपुरी को साथ में मेरी साक्षात्कार हुई और ईश्वरपुरी से श्रीमद चैतन्य महाप्रभु दीक्षा मंत्र को प्राप्त करते हैं और दीक्षा मंत्र को प्राप्त करके महाप्रभु का जीवन संपूर्ण बदल गया। जब महाप्रभु गया से लौटते हैं उस समय महाप्रभु बचपन में बड़े नक्षर करते थे, महाराज सुनाए आप लोग को बचपन में कैसे नक्षर थे, लेकिन जब उन्होंने दीक्षा मंत्र प्राप्त करके उन्होंने अपना घर में लौटते हैं। दीक्षा मतलब क्या होता है, कहते विश्व ज्ञान जब दस्या कुर्जात पाप और संशय, विश्व ज्ञान को शिक्षा मतलब विश्व ज्ञान को प्राप्त करके सारे पाप को ध्वंस करके कृष्ण प्रेम में कृष्ण भक्ति में अपना जीवन को खराबोर करना ही यही असली दीक्षा है। कृष्ण के साथ में अपना संपर्क को जोड़ना। महाप्रभु जब घर में लौटते हैं और वह निमाय पंडित नहीं है, अभी महाप्रभु प्रेमी ही निमाय है, अभी घर में लौट करके और विष्णु प्रिया से महाप्रभु अपना पति से बात नहीं करते, मैया से प्रेम प्रेम मैया से नहीं बोल रहे हैं, जितने उनको बंधु आमा थे इतने पहले महाप्रभु स्वयं शिक्षक थे, बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं तो और ग्रंथ खोलते सौ नाम सौ अक्षर उच्चारण करते उनको कृष्ण का नाम स्फूर्ति होती है, अनाम उच्चारण करते उनको कृष्ण का स्फूर्ति होती है, मां उच्चारण करते उनको राधा जी को उन पर उनको स्मृति होती और उनको कृष्ण प्रेम को कृष्ण नाम कृष्ण भक्ति छोड़ करके महाप्रभु जीवन में और उनको मुंह दुख आता है। दिन रात कृष्ण प्रेम में कृष्ण प्रेम में खराबोर हो रहे। यहाँ पर श्रीमद महाप्रभु एक बहुत बड़ी उन्होंने शिक्षा दिया, क्या शिक्षा दिया महाप्रभु को, ने स्वयं राधा और कृष्ण मिल करके वो चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु यह शिक्षा दिया, जब तक कि कोई व्यक्ति अपना जीवन में सत गुरु पर चरण में आश्रय ग्रहण नहीं करता है तब तक जीव कभी कृष्ण रस में कृष्ण भक्ति में कभी भी गोता नहीं लगा सकते। इसलिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु वो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर श्रीमती राधारानी को भाव लेकर के आए और जीवन में उन्होंने यह शिक्षा प्रदान करते। इसलिए हमारे जितने शास्त्र है हमारे शास्त्र ने बताया गुरु शिक्षा की शास्त्र न सिद्धि न सदगति तस्मात सर्व प्रयत्न न गुरु नाम दीक्षित होवे। कहते जब तक की कोई व्यक्ति सदगुरु का चरण आश्रय ग्रहण नहीं करता है तथा सिद्धि न सदगति उसके जीवन में कुछ भी सिद्धि नहीं प्राप्ति होती। जीवन में कोई गति उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। कहते हैं गुरु शिक्षा भी न चरण सिद्धि न सदगति तस्मात सर्व प्रयत्न। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों सर्व प्रयत्न प्रयत्न पूर्वक गुरु नाम दीक्षित होवे। सदगुरु के चरण में आश्रय ग्रहण करो। हमारा वेद में बताया आचार्य बाल पुरुष वेदो आचार्य से ही दीक्षा व्यक्ति ही वो ब्रह्म भक्त को जान करते तस्मात गुरु प्रवर करते विज्ञान श्रेयोत्तम शास्त्र परे निष्णातम ब्रह्म ही उपमाश्रय। इसे श्रीमद् भागवत ने ही बताया तस्मात गुरु प्रवर्तते। अगर वो ब्रह्म भक्त को प्राप्त करना चाहते हो जरूर अपना जीवन में सदगुरु को बनाओ। श्रीमद् भागवत में रघुवर राजा को भरत महाराज भी बोलते हैं। कहते हे रघुवर महाराज बोलते हैं रघुवर न तपस्या न जाति न विजया न निर्भाव न गृहत्वा नैव छंदता नैव जलाग्नि बिना महत बलो रजोगतम। कहते हे रघुवर महाराज वेद पंचवर्ग नहीं होता है वो ब्रह्म वस्तु को नहीं जाना जा सकता है और अग्नि सूर्य को पूजा करने पर भी वो ब्रह्म वस्तु को तुम प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत पढ़ की आत्मा बहुत सारी ज्ञान है तभी वो ब्रह्म वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते हो। ग्रह ग्रंथ प्राप्ति कर सकते हैं कहते बिना महत बलोर राजोग सकता। जब तक हम कोई महान कोई संतों को चरण पूजने जब तक हम अभिषिक्त नहीं होते हैं तब तक वो वस्तु को हम प्राप्त नहीं कर सकते। प्रहलाद महाराज जी कहीं बताए गुरु ब्रह्मांडी भगवान का चरण नहीं लग सकता है जब तक कोई महान संतों के चरण में आप अभिषिक्त नहीं होते। अभी प्रश्न आता है भाई शास्त्र ने बताया मत गुरु जगत गुरु मत नाथ जगन्नाथ मेरा गुरु ही जगत गुरु है और जो मेरा नाम है वो जगन्नाथ है। अभी विचार आता है शास्त्र ने तो बताया बिना गुरु शिक्षा प्राप्त नहीं करते हुए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होते हुए भी कृष्ण स्वयं परम ब्रह्म होते हुए भी वो शांति के लिए आश्रम में जाते हैं। शांति के वो गुरु रूप में वर्ण करते हैं। राम भगवान होते हुए भी वह शिष्य को गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। अभी प्रश्न आता है भाई का गुरु करनी चाहिए लेकिन गुरु कैसे होनी चाहिए। गुरु का जीवन में करनी चाहिए लेकिन गुरु कैसे होनी चाहिए शास्त्र ने बताया गुरु करो। इसलिए जैसे जैसे व्यक्ति गुरु बना दो हमारा शास्त्र कहा नहीं वो मतलब होता है अंधकार रूप मतलब होता है विश्व आलो। हमारा हृदय रूपी अंधकार मिटा देंगे हृदय में भगवत भक्ति रूपी विश्व आलो को जो संचार कर दे। अतः अगर गुरु अगर उसका हृदय अगर विश्व ज्ञान में परिपूर्ण नहीं हो तो गुरु कैसे हमारा हृदय रूपी अंधकार को कैसे हटा सकता है। इसलिए प्रहलाद महाराज यहाँ पर बता रहे हैं जब उनको पिता जी प्रश्न करता है बेटा प्रहलाद तेरे को जो कुछ प्रश्न करता हूँ तुम बोलते हो केवल कृष्ण भजन करो श्रवण कीर्तन वर्णन पाद सुवर्णन अर्चन बंधन हाँ प्रश्न का बोलते कृष्ण नाम ही सुनो कृष्ण कीर्तन करो कृष्ण स्मरण करो कृष्ण को व्रत प्रदान करो हर बात कृष्ण भक्ति बोलते हो लेकिन तेरे बुद्धि को किसने बिगाड़ा। वो बोलते तेरा बुद्धि को किसने बिगाड़ा जो संध्या अमर को पास में मैंने तेरे को भेजा था शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या संध्या अमर करने तुम्हारा बुद्धि को इसे बिगाड़ दिया। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कहते पिताजी साधारण व्यक्ति का उपदेश द्वारा ये मती भगवान का चरण में नहीं लगती है। इसलिए अगर ये मती को श्लोक क्या है पूर्ण पूर्ण चरित चरवाना। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बात बता रहे हैं गुरु कैसे होनी चाहिए गुरु का क्या लक्षण होने चाहिए ये प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। कहते नहीं था कहते हैं
यह
मती तब तक प्रभु के चरण में नहीं लगती है जब भी हम सदगुरु को इस चरण में आश्रय नहीं ग्रहण करते सदगुरु कैसे होनी चाहिए, गुरु का लक्षण क्या होना चाहिए, स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण क्या होना चाहिए, तब ब्रह्मा जी महाराज बता रहे हैं हम ऐसे गुरु क्या जो गुरु स्वयं संसार में फंसे हुए स्वयं स्त्री को मोह में बच्चों को मोह में दुनियादार में विद्या पैसा में स्वयं गुरु फंसे हुए अपना जीवन तक ही उसमें निपट रहे हैं। अगर ऐसे गुरु जी से अगर हम दीक्षा मंत्र ग्रहण करते हैं जिनको कोई भी परमात्मा का ज्ञान नहीं और भागवत कथा करते हैं बड़े बड़े कथा करते हैं और पहले कंटाक्ट कर लेते हैं 1,00,000 रुपया तो हम भागवत करेंगे निधा भागवत करेंगे और लोग भागवत करने के लिए आते हैं बहुत तक चीजें बनाते हैं लेकिन वो स्वयं भागवत बोले बिजनेस बना दिया भागवत करके पैसा कमाता है अपना बीच बच्चों को पालन करता है कोई भागवत अनुभूति नहीं भागवत केवल लोग बोल रहे हैं इंडिया के बारे में। ऐसे जो गुरु है जो स्वयं संसार में फंसे हुए जो स्वयं कुएं में पड़े हुए हैं वो कैसे कुएं में आप भी पड़े हुए मैं भी पड़ा हुआ हूँ मैं बोलता हूँ हमको कुआं को बर्फ लाओ सुखा दो तुम बोलते हो हमको कुआं को बर्फ लाओ फटक सुखा दो अरे दोनों तो कुएं में पड़े हुए हो दोनों में तो दोनों ही माया में फंसे हुए हो कौन किसको ऊपर में उठाएगा। इसलिए हमारे शास्त्र ने बताया अगर हमको कृष्ण मंत्र लेना है कहाँ से लेनी चाहिए कहते जहाँ तहाँ से अगर मंत्र ग्रहण करेंगे तो मंत्र का फल भी मिलेगा। इसलिए हमारे पद्म पुराण ने बताया संप्रदाय बिना ये मंत्र से विभिन्न तत्व संप्रदाय अगर किसको कृष्ण मंत्र ग्रहण करना है ये पद्म पुराण बोलता है ये भगवान ने कहा कि चार व्यक्ति को बांध में ये चार नाव में भी मिला है अगर ये भवनागर से अगर किसको पार होना ये चार संप्रदाय मैंने बनाया है एक स्त्री संप्रदाय एक ब्रह्म संप्रदाय एक रुद्र संप्रदाय और एक सनक संप्रदाय ये चार संप्रदाय मैंने बनाया है और उसका चार आचार्य भी बने हैं। अगर किसको मंत्र ग्रहण करना है ये चार संप्रदाय से कोई एक संप्रदाय में अंतर्भुक्त होकर के उनको गुरु मंत्र ग्रहण करनी चाहिए तभी ये गुरु मंत्र की सिद्धि होगी। मैं तो शास्त्र बोल देता है संप्रदाय बिना ये मंत्र से विभुरा अगर संप्रदाय छोड़ करके अगर कहीं हम मंत्र ग्रहण करते हैं तभी वो मंत्र का फलीभूत नहीं होगा मंत्र जब कर सकते हो लेकिन मंत्र का कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए अगर हमको मंत्र ग्रहण करना तो क्या करना पड़ेगा कोई शुद्ध वैष्णव संप्रदाय ही हमको अंतर्भुक्त होना पड़ेगा और साधु कैसे होनी चाहिए सतगुरु से वो साधु होनी चाहिए साधु नहीं होनी चाहिए जिनका संपूर्ण जीवन छब्बीस घंटा वृंदावन मंदिर दो युक्त से भक्तान निजुंजी वंदे ज्योति चरणारविंदम जो स्वयं अपना जीवन को भगवत भक्ति में संपूर्ण लगा करके रखे और अपना शिष्यों को भक्तों को भी भगवत भक्ति की शिक्षा प्रदान करते हैं। जब तक हम ऐसे गुरु का चरण में हम आश्रय नहीं ग्रहण करते हैं तब तक हम आपके भगवान जैसे पार नहीं करते। इसलिए श्रीमद चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण राधा भाव लेकर के आए फसल मेरी जगत में स्वयं ईश्वरपुरी का चरण में आश्रय ग्रहण करके तभी जा करके हुए कृष्ण रंग में कृष्ण भक्ति में सरावर होते। इसलिए हम लोगों के लिए चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा प्रदान किया हम लोग तो तथा श्रवण कर रहे हो आ करके लेकिन जब तक सदगुरु का चरण आश्रय नहीं ग्रहण करोगे तब तक हम लोगों का जो भक्ति अधूरे है। इसलिए हम लोग कोशिश करना हमारे महाराज जी मथुरा से आए हैं इसलिए आप लोग कोशिश करना अगर किसको सतगुरु से जीवन में भगवत भक्ति करना है कि जो ठाकुर गोपीनाथ जी को दर्शन कर रहे हैं ये हमारे ठाकुर है हमारे गोस्वामी ने भी ये ठाकुर को प्रकट किए हैं मतलब इनका परिवार हम लोग हैं इसलिए हमारे महाराज भी इनका परंपरा में हमारे महाराज भी उसी परंपरा में आए हुए हैं और इसलिए आप लोग भी कोशिश करना सतगुरु से सतगुरु का चरण में आश्रय ग्रहण करके ये जीवन को भक्ति करके अपना जीवन को सफल बना सकते हैं। साधु संग साधु संग साधु संग नौ मात्र साधु संग
साधु सिद्धियां
एक लौ मात्र भी साधुओं का रुद्र साधुओं का संग हो गया तो जीवन सार्थक हो जाए। संग माने क्या है संग माने एक साथ आना नहीं हमारे सिर में झूम होते हैं महिलाओं के लंबे लंबे केशों में झूम होते हैं और वो रक्त पीते हैं वो भी साथ में रहते हैं ये संग नहीं खान पीन का संग नहीं
करना होता है चम्मक रूपेण गमनम, साधु जैसे चलता है, कैसे भजन करता है, कैसे कृष्ण के भजन में तन्मय रहता है। कम से कम 100,000 भगवान का नाम करता है, दूसरे उसे देकर के भगवत भजन में लग जाते हैं। ये सम्यक रूप से गमन, उनके आचारों को विचारों को ग्रहण करते हुए भजन करते हैं, इसका नाम है सब। साधु के संग में रहकर के उनके विचारों को ग्रहण नहीं किया, भजन नहीं किया, तो ये संग नहीं होगा। हम विषय लोगों के साथ में रहते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, 2-4 मिनट 10 मिनट साधु संग में आते हैं, तो उसका प्रभाव अधिकतर उन्हीं का पड़ता है जिनका संग पड़ता है। इसलिए प्रेम के साथ में, श्रद्धा के साथ में साधुओं के चरित्र को सुने और उसे ग्रहण करने की चेष्टा की। शास्त्रों में कहा गया, सतां प्रसंगां मम वेद्य संविदो भवन चरित कर्ण नारायणां तथा तज्जो सनात आसु अपवात्म वत्मनि श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमिष्य। जिन्होंने सतां प्रसंगां मम वेद्य संविदो, साधुओं के संग में भगवान की परम वेद्यपति कथा होती है, जैसे परीक्षित महाराज की सभा में सुखदेव गोस्वामी हरि कथा का वही वेद्यपति कथा है। उसी तरह से शुद्ध संतों के की सभा में बड़ी सुंदर बड़ी बलवती हरि कथा होती है। उससे होता क्या है, भव रोग के औषधि है। संसार में हम लोग किसी न किसी रूप में दुखी हैं, सभी दुखी हैं, चाहे बाल हो, बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, धन जमीन, सभी दुखी हैं। इस भव रोग की, भव माने क्या होता है, पुनः पुनः इस संसार में भव माने जन्म लेना और मरना और फिर जन्म लेना, ये भाव है। इसकी बड़ी सुंदर मीठी औषधि है भगवत कथा। ये कैसी है, ये ऊपर से भी मधुर है, भीतर से भी मधुर है। इसके अर्थों को समझ करके अगर इन हरि कथा को सुना जाए तो हरि कारण रटायण कानों के लिए भी बड़ी मधुर और हृदय के लिए भी मधुर और भाव इससे हो जाए। उस कथा को श्रवण करके बहुत जल्दी बहुत शीघ्र साधन भक्ति पहले होगी, फिर हृदय में भाव भक्ति आए और अंत में प्रेमा भक्ति आए। किंतु निरंतर श्रवण किया जाए ऐसे ज्ञान हम कहो इसको छोड़ो, इस अभिलाष को छोड़ो, यहां तक कि भगवान की ऐश्वर्य को बोध कराने वाले जो तत्व हैं इसको भी छोड़ो, जो भगवत भक्ति के अनुपाल है इसको भी छोड़ दो। क्या करो, जो जीवित अवस्था में है जहां जैसे भी आने स्थिति अपने स्थान में स्थित होने का, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे त्यागी हो, चाहे सन्यासी हो, जो जहां आए वहीं पर, जो जीत अवस्था में है उसी अवस्था में भी रहे, साधुओं का होता है। उनके मुख से निकली हुई भगवान की विजा कथाओं को श्रवण करें। कैसे, जहां हरि कथा हो रही है उस सभा को प्रणाम करो, जो हरि कथा सुन रहे हैं उन सबको प्रणाम करो, जो हरि कथा बोल रहे हैं उनको प्रणाम करो, जिन्होंने हरि कथा का उद्योग किया है उसकी व्यवस्था की है उस पुरुष को भी प्रणाम करो, उन सबको भी प्रणाम करो जिन्होंने प्रार्थना की है, उसको भी प्रणाम करो। हरि कथा जो सुन रहे हैं उनको भी, हरि कथा वक्ता को भी प्रणाम करो और हरि कथा का सुनो। तो इससे क्या होगा, ज्ञानी प्रयास भगवान से नमन सकेव जीवन की सर्व खरीदान भवदीय वातान सारे पिता सम्मान मनोगी तन से मन से वचन से सबको प्रणाम करके कड़ी श्रद्धा से सुनो। तो भगवान जो अनित है, जिनको जय नहीं किया जा सकता, जिनको पंडित भूत बड़े बड़े ऋषि लोग नहीं कर सके, वो अनित जो भगवान कृष्ण है उनको भी पंडित किया जा सकता है। ऐसे ये हरि कथा है। सब लोगों का अपना कोई घर कोई स्थान नहीं, सर्वत्र भ्रमण का, सर्वत्र भ्रमण करके इसलिए भ्रमण करते हैं लोगों के उपकार के, अपना कोई भी कार्य नहीं, कोई भी कार्य नहीं, इसलिए लोग भगवान की भक्ति में आ गए, इसलिए उनका कल्याण, बड़े दयालु होते हैं। निज का जना ही तबे ज्ञान भाव भर, अपना कार्य नहीं, महान सब महान स्वभाव यही कार्य के बाद पावरों को करने के लिए सर्वत्र उत्साह। जैसे देखो महाराज विदुर महाभारत का युद्ध हो रहा था, होने चला, दुर्योधन ने विदुर को देख करके कहा ये तो पांडवों का पक्ष में है, ये CID गुप्तचर है, खाता है हम लोगों का और गाता है पांडवों का, घर से क्यों नहीं इसको निकाल नहीं दिया जाए। विदुर जी ने कहा मैं किसी का खाता नहीं, मैं तो भगवान और भगवान के भक्तों का जब चाहता हूँ। मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि विषय से अलग हो जाऊं, मुझे मौका नहीं मिलता, आज बहुत अच्छा मौका मिला। उन्होंने अपना धनुष बाण राज्य पर जो मंत्री थे मंत्रित्व पर सब कुछ वहीं पर छोड़ दिया, उनके घर से निकल गए। निकल करके बहुत दिनों तक बाहर में घूमते रहे भारतवर्ष के सब तीर्थों में, और जब लौट करके वृंदावन के निकट आए तो सुना कौरवों के और पांडवों के युद्ध में समस्त कौरवों का सत्यानाश हो गया, सब लोग मारे जा चुके हैं, पांडवों की सेना में केवल पांच आदमी, पांच पांडव कृष्ण और कोई एक बचे, और उधर में कोई नहीं बचा, उनके पक्ष का सेनापति बनना और बचे हैं
उसके समय
अवस्थाना बचा है और बाकी सब मारे गए। अब वो अपने घर लौटे, कहा पांडव लोग धृतराष्ट्र को बड़े आदर के साथ में कहा पिताजी अब तो हम ही लोग आपके पुत्र हैं, अब तो सब मारे गए, आपको कौन देखेगा सुनेगा, इससे कृपा करके आप हमारे घर में पधारिए, हम सभी पांचों भाई द्रौपदी कुंती सभी लोग मिल करके हम आपकी सेवा करें, सब यहाँ उठा करके किसी प्रकार से लाया आए। और इस तरह में जीतों ने सुना के पांडवों के पास में आए, बधाई उनके घर में आ गए, धृतराष्ट्र से मिले, पांडवों ने उनका बड़ा आदर किया, धृतराष्ट्र ने आधी रात के समय में मिले, बोले अरे दूत राजा ने धृतराष्ट्र और उनके ये बड़े छोटे भैया हैं और मंत्री भी हैं, कह रहे हैं अरे धृतराष्ट्र तू अंधा, तेरा भीतर भी अंधा बाहर भी अंधा, तुम्हारे सब पुत्र मारे गए और जिस भीम को तुमने मारने की चेष्टा की पांडवों को भीम को, आज उन्हीं के दिए हुए रुचि पर तू पड़ रहा है, तुम पर लज्जा नहीं आती, तुमको धिकार है, तुमको धिकार है, उनके रोटी की भी जैसे कुत्ते पलते हैं वैसे तो कुत्ते पल रहा है, और क्या इच्छा है तुम्हारी, क्या अभिलाषा है, सब तक मारे गए पांडव पक्ष भी मारे, तुम्हारे पक्ष भी मारे गए, और क्या चाहता है, क्या अभिलाषा है, तुम बाकी है। तो वो छोटे भाई होने पर भी उनके चरणों में धिकार गिर गया,
भैया हमारी रक्षा है। मेरी आंखें नहीं है, अंदर की आंखें नहीं है, मैं समझता हूँ मैंने बहुत कुकर्म किए हैं। उनका फल ये हुआ कि हमारे सारे बेटे हमारे जितने रिलेटिव थे सब लोग मारे, और मैं क्या करूँ। अभी पूछता है क्या है भगवान का भजन, कृष्ण का भजन करो, ये भगवान ने बहुत मौका तुमको मिला मैंने नहीं दिया, पक्ष पास करके और तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया और घर से निकल जाओ। अरे मैं अंधा कैसे निकलूं, अंधा मैं तुम्हें नहीं सकता, मेरा ये लड़किया पता और अभी घर से रात में निकल जाओ कोई नहीं जाए। लड़किया पकड़ लिया और उसके पीछे पीछे आगे चले भीतू की, पीछे चले धृतराष्ट्र, उसके पीछे चले गंधारी और उसके पीछे घर से निकाल दिया। परिवार में आए, गंगा का स्नान किया और भद्दार से चले गए ऊपर में ऋषि के, और ऋषि के इसके गभीर जंगल में कहा जैसे अब तुम भगवान का मंत्र मैं तुमको देता हूँ कृष्ण का, और कृष्ण का मंत्र दिया यहाँ से कहीं नहीं जाना, सारी फल फूल की व्यवसायें उनकी सारी व्यवस्था करेगी और यही जाकर के तू भजन का जब तक तुम्हारी मृत्यु न हो। भजन करते करते विकास करके सूख गया, अब जो दुर्योधन का जो खाया हुआ था वो सब सूख गया और रक्त सूख गया, हाय केवल रह गया, अब उनकी विकल बुद्धि होने लग गई और विदु का मंत्र काम करने लगा। कुछ दिनों में भय भयंकर आग में कह दिया गांव आदमी बनने चारों तरफ से आग ले जल दिया। लोगों ने कहा विश्वास भाग चलो भगने की शक्ति नहीं। उन्होंने कहा जाओ मैं नहीं कहीं जा, बस विदु का दिया हुआ मंत्र जबते जबते अपने मन को एकाग्र करके यहाँ ले आए, आत्मा को यहाँ ले आकर के और भगवान के चरणों में लगा दिया। आग आई चारों से वो भी जल गए, किसी को जलाने की सत्कार करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप जल करके खास हो गए। उनकी और गंधारी भी उसी में जल करके भगवत कीर्तन करते करते परम शांत हो गया। ये एकाग्रचन का फल है भाई, किसी प्रकार से एक एक उपाय से साधु अपना घर नहीं रख अपना काम नहीं जाने पर भी जाता है और उन्हें भगवत भक्ति में लगा देता है। एक संत थे वृंदावन में रहते थे, एक साधु संत रहते थे सचमुच में था, संत रहते थे वो रोज मधुसूदन लेने के लिए ब्रजवासियों के घर में आया, अधिक नहीं लेते छोटा सा एक टुकड़ा, दो चार घरों में घूम जाते दो चार टुकड़े मिल जाते घर में। एक दिन जा रहे थे राधे राधे बस यही कहते और व्यवस्था से माधु क्यों नहीं जाती। आज एक ऐसे घर में पहुंचे एक बुढ़ी आती घर में विधवा कोई नहीं, यही उन्होंने राधे राधे किया धनी थी धनी भी थी, राधे राधे सुनते ही उनका आपात मस्तक जल उठा, ये कहां से मैं जने मरा हुआ आया सवेरे में इसका मुख दर्शन निकल जाओ यहां से, यहां राधे राधे की जरूरत यहां मामा ढूंढे भी सब खंडल जितने हैं सब डूब जाते हैं। उस नई बात उस दिन लौट गए, दूसरे दिन की आए राधे राधे मैया पूछते, उस दिन और फिकर करी दो चार खरी खोटी और गालियां दी, वो गालियों को ही लेकर के चले गए। तीसरे दिन फिर आए राधे राधे, आए तो वो एकदम जली हुई थी क्रोध के मारे, वो अपने आंगन में पोत रही थी, पोतना जानते हैं आजकल तो पोतना भी नहीं, गोबर मिट्टी मिला करके कपड़े में भिजो करके पहले घर को लिपते लिपते से बड़ा स्वच्छ रहता था तो लीप रहे थे, तो उसने पोतना लिया और ले करके उसको मारा तो उन्होंने हाथ में ले लिया लेकर के बड़े प्रसन्न होकर के यमुना जी में गए और उसको मल मल करके धोया। अब कहीं से उनको घी थोड़ा सा मिल गया, घी में उसको मिला करके बत्तियां बनाई जैसे रूम की बत्तियां, और ठाकुर जी के अर्पण कर दिया, उससे प्रकाश होने लगा। अब यहाँ तो प्रकाश हो रहा है, बत्ती जल रही, और उसकी सुखती मिल गई उस बुढ़िया को, क्योंकि उसका दिया हुआ था जैसे भी दिया। चौथे दिन फिर पहुंचे, राधे राधे, अब तो उनके चरणों में आकर के गिर गए। यह है सुकृति, गाली खा करके मार खा करके भी कल्याण करेंगे साधु। नित्यानंद प्रभु हरिदास ने क्या किया, मार खाई, उनका सिर तोड़ दिया। कहते कृष्ण बोलो, कृष्ण बजो, पर कृष्ण शिक्षा। कहते एक बार तो कृष्ण बोल दो, कोई बोल देता है तो बड़े प्रसन्न नहीं बोलता है तो भी कोई बात नहीं, उसे गिर गिरा कर कहते हैं एक भिक्षा दे दो, दो पियकर नौ दिन धाम है, शराब पीते सबको मारपीट करते, उत्पीड़न करते, व्यभिचार करते। नित्यानंद परम जी ने कहा यही सबसे भगवान के नाम के लिए जो कृपा है। कृष्ण कहो कृष्ण और उठाया, शराब पीने की जो कमी थी वो सूर्य उसी से लेकर उससे बाहर महाप्रभु चक्र लेकर के आए मारने के लिए। महाप्रभु जी को नित्यानंद प्रभु जी ने पकड़ लिया कि जन्म में मारना नहीं है, प्रेम देकर के उसका हृदय परिवर्तन करना है। अंत में